श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री प्रभास क्षेत्र की जय। श्री सोमनाथ की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोवृक्षं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकटा मह्यं ददाति स्वप्रकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं हंसजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशदारिणे वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को उठाकर ले आए अमरावती विदर्भ से द्वारका की ओर, तो यहाँ इस माधवपुर खेड नाम के स्थान में रुके थे और वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में मैं कल गया था, आप जब बसों में आ रहे थे मैं अलग से मैं चले गया वहाँ पर, और बहुत छोटा मंदिर है, विग्रह भी बहुत ही छोटे हैं, और ऐसे बताया जाता है कि इसी स्थान में श्री कृष्ण और श्रीमती रुक्मिणी देवी का विवाह हुआ था। और इस स्थान के बिल्कुल पास में एक 5 मिनट पैदल जाने के या 10 मिनट पैदल जाके एक और छोटा सा मंदिर है, बहुत सुंदर पुराना है, इतना पुराना हो चुका है कि सब टूट फूट रहा है, वहाँ थोड़े ब्राह्मण परिवार रहते हैं, रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी रुक्मिणी द्वारकाधीश की मूर्तियाँ हैं। और उस स्थान में विवाह के पहले श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी और उनके साथ ही सब रुके थे वहाँ पर 3-4 दिनों के लिए, वे वहाँ रुके, फिर जहाँ मंदिर का स्थान है वहाँ जाकर उनका विवाह हुआ। रुक्मिणी देवी ने निवेदन किया था श्री कृष्ण से कि हमारा विवाह एक ऐसे स्थान में होना चाहिए जहाँ पर किसी का विवाह पहले हुआ नहीं, परंतु कल यदि हम जाते तो बहुत यहाँ आने के लिए देर हो जाती, क्योंकि अंदर जाना है और 6 बसों को ले जाना और फिर घुमा के ले आना उनको बहुत मुश्किल हो जाता, परंतु खैर क्योंकि भगवान के क्षेत्र में उनकी वाणी ही पर्याप्त है, यदि हम किसी स्थान में न भी जा पाएं कोई बात नहीं, श्रवण करके हमारे चित्त में हम उस स्थान में निवास कर सकते हैं। ऐसे भी बताया जाता है कि जिस स्थान में श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी का विवाह हुआ, इस छोटे से मंदिर में, उसके पास में एक पुकुर या एक तालाब, एक सरोवर है, कुंड है, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मधु नाम के असुर का वध किया था, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। तो ये लीला भी वहीं पर हुई थी। तो माधोपुर घेड़ा में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह, आज भी कृष्ण बलराम जी का मंदिर, विवाह का उत्सव मनाया जाता है, साथ साथ मधुसूदन नाम से भगवान जाने गए मधु का वध करने के बाद। जहाँ तक श्री कृष्ण ने किस तरह से रुक्मिणी देवी से विवाह किया इसको तो आप जानते ही हैं, भी बड़े संक्षेप में बताएं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि विस्तार में वर्णन करें, रुक्मिणी देवी राजा भीष्मक की पुत्री थी। विदर्भ में राजा भीष्मक रहते थे। रुक्मिणी देवी के भाई का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी श्री कृष्ण से बहुत ईर्ष्या करता था, परंतु रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के अलावा और किसी को पति स्वीकार नहीं करना चाहती थी। जब राजा भीष्मक के दरबार में जगह जगह से संत आते थे, ऋषि मुनि आते थे जैसे नारद मुनि आदि, तो वो अवश्य श्री कृष्ण का गुणगान करते। और जब से रुक्मिणी देवी छोटी सी बच्ची थी, वो इन साधुओं के मुखारविंद से श्री कृष्ण का गुणगान सुनते सुनते इतनी आकर्षित हो गई थी श्री कृष्ण के प्रति, ये बचपन से ही ठान लिया था रुक्मिणी देवी ने कि मैं श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी और किसी से नहीं। हालांकि रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को देखा नहीं था इस प्रकट लीला में, परंतु केवल सुनने से रुक्मिणी देवी ने ये तय कर लिया था, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम श्रवण करने मात्र से रुक्मिणी देवी के हृदय में उत्पन्न हो गया था। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा देने वाली एक बात है। हम इन आँखों से प्रत्यक्ष रूप से साक्षात भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं, भले हम मूर्ति रूप में करें, वो भी भगवान से अभिन्न है, फिर भी चलते फिरते भगवान को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो कहीं हमारे मन में ऐसे संशय न हो कि जब हम चलते फिरते भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख पाएंगे, तो फिर भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न हो पाएगा। नहीं, ऐसे कोई संशय है श्रवण कीर्तन स्मरण करना ही पर्याप्त है। जो लाभ अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर मिला था, स्वयं श्री कृष्ण के मुखारविंद से भगवत गीता सुन के, उसी लाभ को हम भक्तों के संग में भक्तों के मुख से भगवत गीता सुनकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरह है जैसे रुक्मिणी देवी ने केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुन के कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त किया, हम भी भक्तों के संग में आके भगवान की कथाओं को सुन के भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा यज्जोषणादाश्वयो अपवर्ग वर्तमने श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिष्यति। कपिलदेव जी बताते हैं कि भक्तों के संग में आकर जब हम भगवान श्री कृष्ण के कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो फिर हम मुक्ति के पथ में शीघ्र ही प्रगति करने लगते हैं और क्रमशः हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर आसक्ति हो जाती है भगवान के प्रति, और फिर शुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है भगवान के प्रति। तो ये सब संभव है केवल भक्तों के संग में आकर उनके नामों का उच्चारण करने से और उनकी कथाओं का श्रवण करने से। तो देखिए, भक्तों का संग इतना शक्तिशाली है और श्रवण का पथ भी इतना महत्वपूर्ण है, और इसके लिए सबूत और प्रमाण है रुक्मिणी देवी। तो रुक्मिणी देवी तो विवाह श्री कृष्ण से करना चाहती थी, राजा भीष्म भी तैयार हुए, परंतु रुक्मी जो भीष्म के पुत्र थे और रुक्मिणी के भाई थे, उनके कोई अलग विचार ही थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, कृष्ण के साथ क्यों किया जाए। रुक्मी भी कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखता था। रुक्मी के एक मित्र थे जिनका नाम था शिशुपाल, और शिशुपाल का नाम तो किसने नहीं सुना। वो तो बहुत ईर्ष्या करता था श्री कृष्ण से, वैसे रिश्तेदार था श्री कृष्ण का, परंतु बचपन से ही एक द्वेष और घृणा भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उत्पन्न हुई थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया उसके हृदय में, और वो रुक्मी का मित्र होने के कारण रुक्मी ने सोचा कि शिशुपाल, मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से होना चाहिए। शिशुपाल तो बहुत प्रसन्न हो गया इस प्रस्ताव को सुनकर, क्योंकि रुक्मिणी देवी का सौंदर्य तो बहुत अधिक था, उनके सौंदर्य की खबर तो तीनों लोकों में फैल चुकी थी। जगह जगह से राजकुमार रुक्मिणी देवी का विवाह करना चाहते थे, परंतु जब रुक्मिणी देवी को पता चला कि रुक्मी के ऐसे विचार हैं तो बहुत भयभीत हो गई। तो उन्होंने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुलाया जिसके ऊपर वो बहुत भरोसा करती थी, और उनसे कहा एकांत स्थान में मिलकर कि कृपया आप शीघ्र द्वारका जाकर श्री कृष्ण के हाथों में ये चिट्ठी दे दीजिए और उनको कहिए कि वो उत्तर भी दे दें। और इस चिट्ठी में रुक्मिणी देवी ने लिखा था कि मैं आपके सिवा और किसी को पति नहीं स्वीकार कर सकती। तो ये चिट्ठी तो बहुत लंबी है, संक्षेप में बात ये थी। तो ब्राह्मण गए वहाँ पर श्री कृष्ण के पास आकर, उन्होंने दरबार में वो चिट्ठी दे दी। श्री कृष्ण ने चिट्ठी पढ़ ली और ब्राह्मण से कहा कि जाइए, आप संदेश दीजिए कि हम अवश्य वहाँ उपस्थित होंगे। तो श्री कृष्ण वहाँ शीघ्र ही अपने घोड़ों को लेकर आए, किसी से बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। उधर बलराम जी को पता चला कि श्री कृष्ण अमरावती की ओर निकल पड़े और वहाँ विवाह होने जा रहा है रुक्मिणी देवी का शिशुपाल के साथ, और रुक्मिणी देवी को उठाकर श्री कृष्ण ले आने वाले हैं और वहाँ भीषण युद्ध होने वाला है। श्री कृष्ण तो सक्षम है अपनी रक्षा करने में, परंतु मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना, तो मैं मेरी सेना को लेकर वहां अमरावती की ओर बढ़ूंगा। तो पीछे से बलराम जी अपनी सेना को लेकर आगे बढ़े। वहां पर रुक्मिणी देवी बहुत चिंतित हो गई थी, विवाह का दिन आ गया था और अभी तक कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो जैसे कि प्रथा थी वहाँ उनके कुल में, जब कोई वधू होती है तो उसे पहले अंबिका के मंदिर में जाना पड़ता है अंबिका की कृपा प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो अपने सहेलियों के साथ वो वहाँ जा रही थी पूजा की सामग्री लेकर, अंबिका देवी से प्रार्थना कर रहे थे कि कृष्ण के पास जल्दी, हमें कृष्ण को यहाँ जल्दी ले आइए। जिस तरह से गोपियाँ वृंदावन में कात्यायनी जो अंबिका ही हैं उनसे प्रार्थना करते थे कि हम कृष्ण को हमारे पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो वहाँ पर उस समय श्री कृष्ण पधारे और राजा भीष्मक ने उनका स्वागत किया, और जैसे रुक्मिणी देवी वहाँ जा रही थी मंदिर में, तो श्री कृष्ण सबके सामने अपने घोड़े के रथ के ऊपर आके रुक्मिणी देवी को उठा लिया, अपने रथ पर रख दिया और चल पड़े। और सारे जो राजा हैं एक दूसरे के मुंह देखते रह गए, और जब तक उनको पता चला कि ये क्या हो गया, तब तक श्री कृष्ण तो हवा की तरह निकल गए थे, गति से निकल गए थे। तब सबके होश आए कि अरे ये क्या हो गया, और सब अपने अपने घोड़े पे बैठ के चले रथ पे पीछा करने, और रुक्मिणी भी चले, शिशुपाल चले, सारे जो योद्धा थे पीछा करने लगे श्री कृष्ण के। तो उधर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को अच्छी तरह से बिठाया रथ के ऊपर, और जैसे जैसे रथ चल रहा था श्री कृष्ण ने भी युद्ध करना शुरू कर दिया। और तब तक पीछे से बलराम जी भी आए और सारे जो रुक्मिणी की सेना थी वो खत्म हो गई। जब सारे योद्धा वापस चले आए तो रुक्मिणी वहां पर था। रुक्मिणी ने कहा कि मैं व्रत लेता हूँ कि जब तक मैं श्री कृष्ण को गिरफ्तार करके नहीं ले आऊंगा, मैं इस अमरावती स्थान में नहीं प्रवेश करूंगा। तो क्षत्रिय लोग कभी कभी ऐसे अपने घमंड में ऐसे व्रत ले लेते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है व्रत लेने के पहले, रजोगुण का एक लक्षण होता है, बस वचन ले लिया, कुछ बाद में सोचे अरे मैंने क्या वचन ले लिया। तो चल पड़े ऐसे, उन्हें सोच विचार नहीं किया कि किनको गिरफ्तार करने के लिए मैंने कर दिया है। तो बड़े आसानी से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को बुला दिया, परंतु रुक्मिणी की पत्नी वाली थी, तो रुक्मिणी देवी के चेहरे को देख कर रुक्मिणी की हत्या नहीं की, परंतु रुक्मिणी का मुंडन कर दिया, मूछें भी काट दी, आधे मूछें काट दी, जो कि मृत्यु के बराबर है। एक अपमानित कराने की जो बात है क्षत्रियों के लिए, भूमि पर किसी का मुंडन कराया जाता है वैसे एक क्षत्रिय का। तो खैर रुक्मिणी अब क्या करता, अमरावती में तो नहीं जा पाया, तो बाहर घर पर रह के अपना घर बसाया, अमरावती नहीं जा पाया। उधर श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को लेकर वापस चले आए बड़े धूमधाम से। फिर यहाँ माधवपुर घर में पहुँचे, यहाँ विवाह किया और फिर द्वारका में उनको ले गए। द्वारकावासी बहुत प्रसन्न हुए रुक्मिणी देवी को देखकर, श्री कृष्ण की पहली रानी थी, सबसे वरिष्ठ रानी, और फिर सत्यभामा और जाम्बवती देवी, इनके साथ श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ इसकी चर्चा तो हम कल कर ही चुके हैं। माधवपुर घेर से आगे चल के और कई 20-25 किलोमीटर आगे एक स्थान है जिसका नाम है मांगरोल। मांगरोल में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता। ये लगभग 500 वर्ष पहले की बात है, 400-500 वर्ष होंगे मेरे ख्याल से। वैसे ये बहुत शुद्ध कृष्ण भक्त थे, जूनागढ़ के थे। जूनागढ़ प्रांत जो है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जूनागढ़ ये गिर प्रांत है जहाँ गिर सिंह मिलता है ना, बहुत प्रसिद्ध है गिर सिंहों के लिए। तो जूनागढ़ में वो रहते थे, अपने बड़े भाई के साथ रहते थे, परंतु बचपन से ही उनको साधन भजन में बहुत रुचि थी। धार्मिक क्रियाओं में अपने भजन पूजन में ही रहा करते थे। उनके बड़े भाई का विवाह हो गया, परंतु बड़े भाई की पत्नी जो थी उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब कार्य। उनका देवर इस तरह के कार्य कर रहे, दिन भर भजन पूजा में लगा रहता है, तो बार बार नरसिंह मेहता को टोकते रहती, अपमानित करते रहती। तो एक बार नरसिंह मेहता ने सोचा कि अब मुझसे यहाँ रहा नहीं जा रहा है, दिन प्रतिदिन ऐसे टोकते ऐसे अपमानित करते रहना और कुछ ना कुछ सुनते रहना है उनसे, तो मैं उनके जीवन में बाधा नहीं बनना चाहता, तो मैं घर से निकल जाऊँगा। तो वो निकल गए अपने घर से और इधर उधर घूमते कहीं वन में चले गए। वहाँ शिव जी का कोई पुराना मंदिर था, शिवलिंग के पास बैठे वहाँ बहुत शिव जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे। तो शिव जी स्वप्न में आए, शिव जी ने पूछा कि क्या आशीर्वाद चाहिए तुम्हें। तो नरसिंह मेहता ने कहा, कितने बुद्धिमान थे देखे, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि क्या मांगना चाहिए, आप जो ठीक समझे, जो आपको पसंद हो वो मुझे आप प्रदान कीजिए, जो आपको चीज़ अच्छी लगती हो और जो मेरे लिए भला हो वो आप प्रदान मुझे दीजिए। देखे तो दिमाग थे बहुत, उन्हें पता था कैसे मांगना चाहिए। शिव जी तो महान भक्त हैं भगवान कृष्ण के। तो शिव जी ने कहा, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ और मुझे कृष्ण भक्ति सबसे अच्छी लगती है, और ये सबसे बड़ा उपहार है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो शिव जी की कृपा से नरसिंह मेहता के हृदय में कृष्ण भक्ति की श्रद्धा और वो झुकाव बहुत तीव्रता से बैठ गया, और शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि बस श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण कीर्तन और जप आदि आप करते रहोगे जीवन भर बड़े प्रेम से, तो इससे बड़ा वरदान और क्या मिल सकता है। ये दुनिया के जो आशीर्वाद होते हैं वो तो क्षण मंगल होते हैं, क्षणिक होते हैं, अब हैं कल चले गए, और इन जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब अन्यों को आशीर्वाद देते थे तो कभी ये नहीं कहते थे चिरंजीवी भव, वो कहते थे कृष्णे मतिरस्तु, कृष्णे मतिर रहो, कि तुम्हारी चेतना सदा कृष्ण में बनी रहे, तुम कृष्ण भावना भावित हो जाओ, ऐसे आशीर्वाद महाप्रभु दिया करते थे। और ऐसे आशीर्वाद हमें भी मांगने चाहिए। हम कई बार शिव जी के मंदिरों में जाते हैं, जैसे नागेश्वर महादेव में होकर आए और अब यहाँ सोमनाथ जी में सोमेश्वर मंदिर में आज सुबह हम सब गए थे, तो वहां शिव जी के पास जब जाते हैं तो हमें क्या मांगना चाहिए, प्रार्थना क्या करनी चाहिए उनसे? बस हमें कृष्ण भक्ति आप प्रदान करें, आप महान वैष्णव हैं, आपके हृदय में कृष्ण प्रेम है, तो उस कृष्ण प्रेम का एक बूंद कृपया आप हमारे हृदय में प्रदान कर दीजिए, हमारे जीवन को आप धन्य बना दीजिए। इस तरह से शिव जी के चरणों में हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। नरसिंह मेहता हमारे सामने प्रमाण है, और ऐसे कई उदाहरण हैं लोगों के जो शिव जी के पास गए निस्वार्थ भावना से और शिव जी के कृपा से उनको श्री कृष्ण मिले, क्योंकि शिव जी आचार्य हैं, परम वैष्णव हैं। तो खैर नरसिंह मेहता फिर दिन भर कृष्ण का गुणगान करते रहे, जूनागढ़ में वो बहुत प्रसिद्ध हो गए, लोकप्रिय हो गए, सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान करने लगे, उनका सत्कार करने लगे, एक बहुत बड़े भक्त के रूप में जाने जाने लगे वहाँ पर जूनागढ़ में। एक बार ऐसे हुआ कि कोई झूठा आरोप उनके ऊपर लगा कि उन्होंने कुछ चोरी की है। अब जूनागढ़ की जो रानी थी वो भक्त थी, तो उनको विश्वास था कि नरसिंह मेहता बहुत बड़े भक्त हैं और ये कभी भी ऐसी चोरी नहीं कर सकते हैं, ये गलत आरोप लगा है उनके ऊपर। परंतु राजा उतना श्रद्धालु नहीं था, तो राजा ने सोचा हो भी सकता है, क्या कहें, क्या क्या पर क्या पता, तो उन्होंने ऐसे कोई कदम उठाया नहीं जिससे कि नरसिंह मेहता की रक्षा हो। फिर उस राजा को, जूनागढ़ के राजा को हराया और उसे मुसलमान बना दिया, और तब से तो जूनागढ़ के राजा जो थे वो मुसलमान रहे। और थोड़े साल 60-70 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय भी काफ़ी समस्याएं हुई थी जूनागढ़ और हैदराबाद में, ये दो प्रांत थे, और कश्मीर तीसरा प्रांत जो वाद के प्रांत हुए थे, क्योंकि यहाँ मुसलमान राजा था, प्रजा हिंदू अधिक थी। हैदराबाद में भी वैसे हुआ, कश्मीर में उल्टा था, कश्मीर में राजा हिंदू था, प्रजा मुसलमान थी, हिंदू लोग भी थे अवश्य परंतु अधिक संख्या में मुसलमान लोग थे। तो जूनागढ़ इस प्रांत का इतिहास इस प्रकार से है, और जब सोमनाथ मंदिर की चर्चा करेंगे तब और थोड़ी बात हम आगे इस विषय को बढ़ाएंगे। तो खैर तो नरसिंह मेहता वहाँ से निकल गए। नरसिंह मेहता इतने कृष्ण भक्ति में लगे रहते थे, जैसे तुकाराम महाराष्ट्र में बहुत गरीब थे, उनके भी बच्चे थे, अपने परिवार या परिवार के भरण पोषण के प्रति कोई ध्यान नहीं देते थे, जैसे तुकाराम सदैव अपने भजन में इतने मग्न रहते थे और पत्नी उनकी बेचैन हो जाती थी कि कुछ तो करो, बच्चे भूखे हैं, ठीक उसी तरह नरसिंह मेहता की पत्नी भी बेचैन होती रहती थी। अरे दिन भर कृष्ण कृष्ण लगा रखा है, अब देखो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना है, कौन देखभाल करेगा इनका, आप तो केवल कृष्ण कृष्ण कहते पूरा दिन बिता रहे हो, घर कैसे चलेगा हमारा। खैर किसी न किसी तरह से घर चलता गया, और उनकी एक बेटी थी, बेटी की आयु हो गई थी, वह विवाह के योग्य हो गई थी, परंतु नरसिंह मेहता को समय कहाँ था इस विवाह की व्यवस्था करने के लिए। बेटी के लिए वर ढूंढो, पैसे कमाओ शादी के लिए, इसके लिए तो समय नहीं था नरसिंह मेहता के पास। वो तो दिन भर भजन कीर्तन किया करते थे, तो पत्नी उधर बेचैन हो रही थी और गांव के लोग इधर उधर कुछ बातें कहते रहते थे जो नरसिंह मेहता के पत्नी के कानों तक तो पहुंचती थी और वो भी बेचैन हो जाती थी। लोग कहते थे, अरे नरसिंह मेहता को तो देखो, बेटी बड़ी हो गई है, अभी तक शादी करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं ये। तो वैदिक काल में ये बहुत निंदनीय बात मानी जाती थी कि बेटी है, बड़ी हो गई है, शादी के योग्य हो गए, फिर भी हम कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, बेटी बस घर में ही है, ना हम कोई कोशिश कर रहे हैं कि कोई वर ढूंढ रहे हैं या कुछ। तो पत्नी ने आकर बहुत टोका अपने पति को, नरसिंह मेहता को, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करो, देखो सारा गांव हमारी निंदा कर रहा है, अब क्या किया जाए। तो नरसिंह मेहता तो काफी ऊब जाते थे अपने पत्नी के टोके जाने पर, तो कहने लगे, क्या तुम्हें कृष्ण में भरोसा नहीं है? आज तक हमारा भरण पोषण कौन कर रहा है? श्री कृष्ण ही तो कर रहे हैं भरण पोषण, तो फिर हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ये तो ये परिवार है, ये भी कृष्ण का परिवार है, यदि कृष्ण को अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए तो उनको कोई कदम उठाना चाहिए। तो चिंता नहीं करना, कृष्ण सब संभाल लेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन मनन करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में सदैव रत रहता है, उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं मैं पूर्ण करता हूँ, और जो भी उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो नरसिंह मेहता को इस श्लोक में पूरा विश्वास था, परंतु पत्नी को विश्वास नहीं था। पत्नी कह रही थी, ये सब ठीक है, जब विवाह है तो पैसे कौन कृष्ण ला के देंगे क्या? अरे वर ढूंढने कौन कृष्ण जाएंगे क्या? क्या तुम्हें आपको नहीं करना चाहिए कुछ? आप तो लड़की के पति पिता हो, हमें कुछ करना चाहिए, फिर हम कृष्ण के ऊपर निर्भर रहें। ऐसे दिन भर भजन कीर्तन करके कृष्ण सब कुछ कर लेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो अब नरसिंह मेहता सोच रहे थे क्या किया जाए। श्री कृष्ण से कहने लगे, अरे कृष्ण देखो, मैं तुम्हारे शरण में आ चुका हूँ, अब मुझे क्या पता मेरे बेटे की शादी होगी नहीं होगी, वो तो तुम्हारे हाथ में है, और ये परिवार तो तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें इस लड़की की शादी करानी है, तुम्हें देखना है, जब लोग निंदा करेंगे तो मेरी नहीं करेंगे, तुम्हारी करेंगे। देखो कृष्ण का परिवार है, फिर भी बेटी का शादी नहीं करा है, तो मेरी बदनामी नहीं होगी, तुम्हारी होगी, इसलिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। अभी मैं कहाँ जाकर पैसे इकट्ठा करूंगा तुम्हारे लिए? तो ऐसे समय बीतता गया, लेकिन पत्नी के दबाव से पत्नी फिर कहा, जाओ तो सही। लेकिन अगले दिन अचानक एक चमत्कार हुआ, कोई बहुत सभ्य परिवार के लोग आए उनके घर में और कहने लगे कि हमारे एक बेटा है, उसके लिए हम वधू ढूंढने के लिए आए हैं, हमने आपका नाम सुना है कि आपके पास भी बहुत एक योग्य बेटी है, तो हम भी देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो बेटी से मिले, उनको पसंद आया, कहा कि हाँ तुरंत हम विवाह हम समझौता कर लेते हैं। तो समझौता तो हो गया, फिर पंचांग आदि देखने लग गए कि विवाह की तारीख कौन सी होनी चाहिए। तो उन्होंने देखा कि अरे केवल 4 दिन बाद मुहूर्त है और उसके बाद 1 साल के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, तो या तो हम 4 दिन बाद विवाह करें या 1 साल रुकें। तो नरसिंह मेहता ने कर लेंगे 4 दिन में, तो हाँ में हाँ में हो गई, सब कुछ हो गया, वो चले गए, सभी लोग खुश थे। लेकिन पत्नी बाद में कहने लगी, जब नरसिंह मेहता ने कहा देखा ना कृष्ण ने व्यवस्था कर दी ना, तो पत्नी कहने लगी अरे क्या देखा, ये तो बात हो गई, अभी खर्चे कौन देंगे, अभी शादी के खर्च भी होते हैं ना, अब ये सब आएंगे उनको दहेज देना पड़ेगा, अभी इतने सारे दावत सबको खिलाना होगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर हमारे बेटी को कपड़े देने होंगे, गहने देने होंगे, कितने सारी चीज़ें देनी होंगी, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अरे कृष्ण कर लेंगे, अरे क्या कृष्ण करें, कुछ तो आप करो, अब निकलो घर से बाहर, आप जाओ ठीक, इसी से मांग के ले आओ। अरे कौन देगा मुझे पैसे, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कुछ गिरवी रखने के लिए भी मेरे पास सामान नहीं है। तो नरसिंह मेहता के पत्नी ने अपने पास जो भी थोड़े बहुत गहने थे वो दे दिए, चलो ये गिरवी रखो और इसके बदले में कुछ पैसे ले आओ, और फिर चलो कुछ तो अभी चार दिन बचे हैं, क्या किया जाए, और तो कोई चारा नहीं है। तो नरसिंह मेहता वो गहने ले आए, अपने पत्नी के आभूषण अपने थैली में रखे, सोच रहे थे इधर उधर कहीं अमीर आदमी के पास, कहीं सराफ के पास जाऊँगा, वहाँ से ये गिरवी रख के कुछ मैं धन ले लूँगा, उधार लूँगा कुछ पैसे। इधर उधर घूमते घूमते गाँव में पहुँचे और देखा कि वहाँ भागवत सप्ताह शुरू हो रही है, पहला दिन है। उनको तो भागवत सब कृष्ण की कथा सुनना तो बहुत पसंद था, वो बैठे और बैठे बैठे इतने कृष्ण कथा में तल्लीन हो गए, इनको पता ही नहीं चला कि एक दिन बीत गया, दो दिन साथ के सात दिन बीत गए, और उनको भाई चेतना ही नहीं रही कृष्ण कथा में, बस इतने आराम से बैठे रहे, कृष्ण कथा सुनते रहे। उधर सात दिन बीत गए, भागवत कथा समाप्त हो गई, और फिर अचानक याद आया सात दिन बीत गए और मेरे लड़की की शादी तो चार दिन में होने वाली थी, वो तो आए भी होंगे वापस, और अभी हम तो पैसे लेकर गए हैं, भूल ही गया, पत्नी के आभूषण भी मेरे पास में पड़े हैं, अब मैं क्या बताऊंगा पत्नी को, वो तो झाड़ू से मेरी पिटाई करेगी, तो क्या होगा, क्या मैं मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। तो मैं ठीक है, ऐसे मैं झूठ बोलूंगा जाके कि देखो मैंने बहुत प्रयास किया, इधर उधर गया, लेकिन कोई पैसे देने के लिए ही तैयार नहीं था, तो मैं बहुत दूर है किसी गाँव में चला गया, और इसलिए आते आते मुझे देर हो गई, मैं क्या करूं। और फिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, तुम्हारी ऐसी लीला पता नहीं क्या तुम्हारी इच्छा थी, मुझे यहाँ इस भागवत कथा में बिठा लिया और मेरा ध्यान यहीं पे लगा दिया, अब मेरी बेटी का वहाँ क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या स्वरूप होगा जब हम जाएंगे पीछे, मुझे पता नहीं। खैर जो भी हो, अब सामना तो करना ही पड़ेगा, क्या करें। तो धीरे 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 से वो जा रहे थे अपने घर की ओर, जब अपने गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे तो वहां देखा कि माहौल बड़ा अद्भुत है, बहुत सारे लोग बड़े हंस के बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत आनंद खुशियां मनाई जा रही थी। और नरसिंह मेहता ने पूछा कि क्या बात क्या है, क्या हुआ। अरे शादी कितनी बढ़िया ढंग से हो गई, ऐसे ऐसे शादी तो हमने आज तक जीवन में नहीं देखा, दुनिया में ऐसे कोई शादी की व्यवस्था नहीं हुई होगी, जैसे बड़े बड़े राजाएं अपने करती हैं राज कन्याओं के राजकुमारियों के लिए विवाह, वैसे हुआ। किसका विवाह हुआ, अरे तुम्हारी बेटी का हुआ, नहीं पता तुम्हें, और तुम ही पूछ रहे हो किनका विवाह हो गया। अच्छा मेरी बेटी का विवाह हो गया, वो भी ठाट से ऐसे। तो चलते गए, देखा कि सब जगह खबर, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे विवाह तो हमने देखा ही नहीं, सभी लोग बहुत खुश थे, और उनकी बेटी तो चली गई थी पति के घर, सब धूमधाम से विवाह सब हो गया था। तो पत्नी के पास आए, पत्नी तो बड़े खुश थी, झाड़ू वगैरह कुछ था नहीं साथ, बड़े खुश थे कि तो पूछा भाई क्या हुआ, कहा कि एक लड़का आया, जब आप निकल पड़े थे ना तो एक लड़का आया था, सांवला सा था, बहुत सुंदर था दिखने में, और उसने उस साथ में बहुत चीजें लेकर आया था, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आया, गहने लेकर आया, और अन्न आदि सब लेकर आया, बहुत कुछ लेकर आया, दूध घी सब लेकर आया।
और इतनी बढ़िया दावत हो गई क्योंकि किसी चीज की कमी ही नहीं पड़ी, और हमारे बेटी के लिए अच्छे अच्छे नए कपड़े मिले, उसके गहने मिल गए, सब कुछ मिल गया। तो फिर नरसिंह मेहता सोच लगे, देखो मैंने बताया था ना, अनन्या चिंतयन्तु माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी नरसिंह मेहता की नकल करें, आप सोचे कि चलो भाई हम कुछ करेंगे नहीं परिवार के भरण पोषण के लिए। नरसिंह मेहता ने तो ऐसे नहीं किया, वो तो भजन करते रहे, हम नरसिंह मेहता नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अपने संसार के कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, परंतु साथ साथ तीव्रता से भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। हमें ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि केवल हमारे मेहनत से काम नहीं चलेगा, जब तक भगवान की कृपा हमारे जीवन में नहीं होगी तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो अपना मेहनत हमें अवश्य करना चाहिए, और उसके बाद फिर हमारे मेहनत का फल क्या होगा वो कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए। साथ साथ हमारी साधना, हमारा श्रवण कीर्तन, सेवा आदि बहुत सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। जब हमारी भक्ति तीव्र होगी तब भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में सारे साधन जोड़ देंगे। तो नरसिंह मेहता की तरह यदि हमें निष्क्रिय होना है संसारी चीजों के लिए, नरसिंह मेहता के भजन की तीव्रता जैसे वो भी होनी चाहिए। नरसिंह मेहता की तरह तीव्र भजन हमारा नहीं है तो संसारी कार्यों में नरसिंह मेहता की नकल नहीं कर सकते। संतुलन होना चाहिए जीवन में विशेष करके गृहस्थों के लिए। तो खैर नरसिंह मेहता की बहुत ऐसी सुंदर कहानी है, यहाँ के बहुत प्रसिद्ध संत रहे हैं, पोरबंदर में आए थे वो, पास में इसलिए महात्मा गांधी ने उनका एक भजन है वो राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रसिद्ध कराया है, वैष्णव जन तो ते हैं कहिए पराए जाने रे, बचपन में हमने सीखा था। तो ये नरसिंह मेहता का स्थान था मांगरोल, फिर वो वहाँ पर चले आए, उनका कोई कुआं है, छोटा मंदिर भी है ऐसे सुना, वहाँ भी हम लोग नहीं जा पाए, मैं भी नहीं जा पाया कभी। फिर हम अब यहाँ आए कल रात को प्रभास क्षेत्र में। जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है सोमेश्वर या सोमनाथ मंदिर, और दूसरी बात यहाँ की है कि श्री कृष्ण और उनके यदुवंशियों का तिरुभाव। तो पहले सोमनाथ मंदिर की चर्चा थोड़ा बहुत कर लेते हैं। यहाँ ये सोमेश्वर महादेव हैं, सोमनाथ जी हैं, शिवलिंग है, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है। जब हम द्वारका गए थे तो उस समय नागेश्वर महादेव में गए थे, 12 ज्योतिर्लिंगों में से वो एक है, और यहाँ सोमनाथ में सोमेश्वर महादेव ये और हैं, एक दूसरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से और प्रसिद्ध हैं, जैसे रामेश्वर हैं, केदारनाथ हैं, विश्वनाथ हैं वाराणसी में, त्र्यंबकेश्वर हैं महाराष्ट्र में, ऐसे कई और स्थान हैं। तो ज्योति के रूप में शिव जी ने अपने आप को प्रकट कराया था, इसलिए ज्योतिर्लिंग कहते हैं इनको। तो इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि एक बार, और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आता है, चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियों से हुआ, और इन 27 कन्याओं में से एक थी जिनका नाम था रोहिणी। तो इतने पत्नियों में चंद्रदेव रोहिणी देवी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, हमेशा रोहिणी देवी के को साथ में रखते थे, अन्य 26 जो हैं उनके साथ उनको ध्यान नहीं देते थे। तो ऐसे काफ़ी समय तक चलता गया, ये बाकी 26 जो उनकी पत्नियां थी तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारे पति ऐसा क्यों करते हैं, केवल एक ही रानी के प्रति ध्यान देते हैं, वो भी हमारी बहन है, और हमारे ओर ध्यान ही नहीं देते। तो अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गए शिकायत करने। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद चंद्रदेव या सोमदेव को बताया कि देखो ऐसा करना नहीं, 27 पत्नियां हैं, सबको ध्यान देना, सबके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसे ही एक मेरी कन्या के ऊपर ध्यान नहीं देना। परंतु सोमदेव या चंद्रदेव ने बात नहीं मानी, बहुत आसक्त थे रोहिणी देवी से, तो उनके साथ नहीं रहे। बार बार कहने पर जब उन्होंने बात नहीं मानी तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया चंद्रदेव को कि तुम्हारा तुम्हारे सौंदर्य और तेज का घटन होता रहेगा और इस तरह से तुम पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे। तो उसके बाद चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया, टीबी, और इसके कारण जो है उनका तेज उनका सौंदर्य घटते गया घटते गया। उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि चांद बन के मैं जो वनस्पतियां हैं और फसल आदि हैं उनको मैं स्वाद या रस प्रदान करता हूँ। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो सब्जियों में फलों में अनाज में आदि जो स्वाद है वो चंद्रदेव के किरणों के कारण है, चांद के किरणों से वो स्वाद उनमें आ जाता है। तो जब ऐसे चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया और उनका तेज कम होता गया तो फिर यहाँ सब्जियों में अनाज में फलों में कोई स्वाद रहा नहीं, कुछ रस रहा नहीं, वो बढ़ते नहीं रहे। तो सारे ऋषि मुनिगण बेचैन हो गए कि अभी हम जिएंगे कैसे और सारी प्रजा यहाँ जिएगी कैसे। चांद की किरणें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, हम तो केवल सूर्य की किरणों को महत्वपूर्ण मानते हैं परंतु चांद की किरणें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कार्तिक महीना अब शीघ्र आने वाला है, जब पूर्णिमा होगी शरद पूर्णिमा के रात में, ऐसी कथा है हमारे मंदिरों में, पूर्णिमा के रात को खीर बना के बहुत बड़े पात्र में ऊपर छत पर रखते हैं ताकि पूर्णिमा के चांद की किरणें खीर में लगें और खीर का स्वाद और भी मीठा बन जाए। और वैसे चांद का प्रभाव केवल सब्जियों पर वनस्पतियों पर अनाज आदि पर नहीं होता, साथ साथ जो समुद्र की लहरें हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जो ज्वार भाटा आदि होती हैं वो समुद्र के खिंचाव के कारण, कभी ऊंचा उच्च ज्वार होता है तो कभी निम्न ज्वार होता है, हाई टाइड लो टाइड। तो जब ऐसे चंद्रदेव की शक्ति कम होती गई तो समुद्र के जल में भी बहुत परिवर्तन होने लगा, सब जगह असंतुलन हो गया। तो सारे ऋषि मुनि फिर दक्ष प्रजापति के पास आए कि हमें क्या करना है, कुछ आप इस श्राप को वापस ले लीजिए, ये हम बहुत कष्ट हो रहा है। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि ऐसे तो मैं नहीं कर सकता, एक बार जो मैंने श्राप दे दिया सो दे दिया, इसको वापस लो खींचने का जो की जो ताकत है वो मुझमें नहीं है, परंतु हाँ आप शिव जी की उपासना कीजिए, शिव जी की उपासना करने से वो आशुतोष हैं, वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। तो चंद्रदेव या सोमदेव अपनी पत्नी रोहिणी देवी को किसको साथ में लेकर यहाँ पे इस जगह आए, यहाँ शिवलिंग देखा, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग को देखकर वहाँ उपासना की, शिव जी की खूब सेवा की। यहाँ पर शिव जी जो कि आशुतोष हैं बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। यहाँ भागवत में बताया जाता है कि चंद्रदेव ने यहाँ समुद्र में स्नान किया और उसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई। और इस घटना का वर्णन स्कंद पुराण में है, महाभारत में है, श्रीमद् भागवत में है, अन्य कई ग्रंथों में है। तो ये स्थान बहुत पावन है,
इसका वर्णन अनेक शास्त्रों में है। तो शिव जी की कृपा से फिर उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो क्षय होगा तुम्हारा वो हमेशा नहीं होगा। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था वो कि ऐसे क्षय होगा, क्षय होता रहेगा, परंतु शिव जी ने कहा नहीं, मैं पूरी तरह से तो 100% बदल नहीं सकता उस श्राप को, लेकिन बीच रास्ता निकालते हैं, 15 दिनों के लिए क्षय होगा और फिर वो बढ़ते जाएगा आपका आपका तेज, और फिर से क्षय होगा, फिर बढ़ते जाएगा। इस तरह से पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं चांद के। कृष्ण अर्थात काले, काले अर्थात अंधकार, कि जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चलते हैं उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, और फिर अमावस्या में चांद दिखाई नहीं पड़ता, फिर उस समय से पूर्णिमा तक जो 14-15 दिन होते हैं फिर उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, सफेद, क्योंकि उसमें रोशनी बढ़ती रहती है, तेज बढ़ते रहता है। तो इस लीला के बाद ये ऐसे चांद के ये तिथियां होने लगी इस तरह से। तो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर बना, बहुत पुराना स्थान है ये। तो इसके बाद यहाँ ये सोमेश्वर महादेव के नाम से जाने गए, या सोमनाथ। वैसे ये स्थान इतना पुराना है और बार बार इसका निर्माण कार्य किया गया है। भीम राजा थे पांडवों के नहीं, उन्होंने लकड़ी में, उन्होंने लोहे में बनवाया, इसके पत्थर में बनाया, क्षमा कीजिए, इनके पहले श्री कृष्ण ने सोने ने लकड़ी में बनवाया, उनके पहले किसी ने चांदी में बनवाया, उसके पहले किसी ने सोने में बनवाया, पूर्व युगों की बात है। परंतु पिछले 1000 वर्षों में मंदिर के ऊपर 7 बड़े आक्रमण हुए हैं अरबों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा। 7 बार ये मंदिर तोड़ा गया और 7 बार इसका पुनः निर्माण हुआ। इतिहास में आप सबने पढ़ा होगा, आपके पाठशाला में इतिहास का पाठ याद करिए, तो हर बार जब भी कोई सिंध प्रदेश से या अफगान प्रदेश से कोई यवन या तुर्की सुल्तान आदि आते, तो सोमनाथ का ऐश्वर्य इतना था कि इस ऐश्वर्य के बारे में सुनकर ही सभी लोग आते डाका डालने के लिए, तो मंदिर को तोड़ डालते, और पुनः कोई श्रद्धावान राजा इस इलाके के उस मंदिर का पुनः निर्माण कर लेते। एक बार फिर मोहम्मद गजनवी आए, 3rd या 4th बार मेरे ख्याल से, उन्होंने भी ऐसे फिर मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। अंतिम जो 7वां था हमला, वो औरंगजेब राजा का था, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाए थे कि इतना ऐश्वर्य इस मंदिर में है, और हर बार ऐश्वर्यशाली वो मंदिर हो जाता था, पूरी तरह से कभी तोड़ नहीं पाए उस मंदिर को। ऐसे बताया जाता है कि जब औरंगजेब राजा यहाँ पर आया था, सोमनाथ मंदिर के सामने खड़ा हुआ, तो उसके सर से जो मुकुट है वो गिर गया, तो बहुत गुस्सा आया औरंगजेब राजा को, उसने आदेश दिया कि मंदिर को तोड़ा जाए। वैसे राजा गोविंद देव मंदिर के जो वृंदावन में है उसके संदर्भ में भी ऐसी ही घटना है। औरंगजेब आगरा में थे और आगरा में अपने किले के ऊपर गए और दूर देखा कि कोई एक इमारत है, वहाँ पे एक दीप दिखाई दे रहा है, तो अपने सैनिकों से पूछा, मंत्रियों से पूछा कि उतनी ऊंची इमारत कौन सी है और वहाँ दीप है, हमारे स्थान से ऊंची कोई इमारत है कौन सी, उन्हें बताया वो गोविंद देव मंदिर है वृंदावन में, इतनी ऊंची है, हाँ, उसको तोड़ दिया जाए। तो सैनिक वहाँ भेजे औरंगजेब ने, तो गोविंद देव मंदिर में आए और मंदिर तो बहुत सुंदर है आज भी, हुआ है उस मंदिर का भाग, उससे भी हम कल्पना कर सकते हैं कि पहले कितना सुंदर हुआ होगा, 7 मंजिल ऊंचा था वो। तो ऊपर से ये लोग तोड़ते गए, जब 3rd या 4th मंजिल तक पहुंचे, उस समय सारे सारा मंदिर जो इस तरह हिलने लगा कि घबराकर वो सैनिक उतर पड़े वहां से चले गए कि इनका भगवान बहुत शक्तिशाली है, यहाँ और कुछ हमें नहीं करना चाहिए। तो खैर, तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी ऐसी कोई दुर्घटना हुई तो उन्होंने आदेश दिया कि तोड़ दो मंदिर को। तो तोड़ने का खूब प्रयास किया, आधा तोड़ दिया और नहीं तोड़ पाए, लेकिन जितना भी धन आदि था वो लूट कर सब चले गए। तो ऐसे बार बार मंदिर का निर्माण कार्य हुआ और 1950 लगभग उसमें यहाँ भारत के जो आधुनिक राजनेता थे सरदार पटेल और के एम मुंशी, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन शुरू किया, राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनके द्वारा फिर ये मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। और इसका इतिहास इस तरह से है, 7 बार तोड़ के उसे पुनः बनाया गया है, इसलिए आज ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है। बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, भक्त लोग आते हैं। तो संक्षेप में इस प्रांत इस जगह का इतिहास इस प्रकार से है, समुद्र पास में है और बहुत सुंदर रमणीय स्थान भी है। जब चंद्रदेव को प्रकाश पुनः प्राप्त हो गया, उस घटना के बाद इस स्थान का नाम हुआ प्रभास। प्रभास मतलब जिनका तेज पुनः प्राप्त हो गया है। फिर उस समय के बाद इस स्थान का नाम हुआ प्रभास क्षेत्र। तो अब सोमनाथ मंदिर की संक्षेप में लीला करके, अब संक्षेप में ही हम भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशों के और श्री कृष्ण के आविर्भाव या तिरुभाव की चर्चा करते हैं संक्षेप में, और विस्तार में हम चर्चा करेंगे आज शाम को। तो आज का कार्यक्रम इस प्रकार से होगा कि अब हम थोड़ी देर में हम निकल पड़ेंगे भालका तीर्थ। भालका तीर्थ वो स्थान है, वहाँ चर्चा करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, जहाँ श्री कृष्ण अपने तिरुभाव की तैयारी में गए थे। ऐसे कहा जाता है कि उनके चरण कमल के अंगूठे में जरा नाम के एक शिकारी ने तीर छोड़ दी और इस तरह से भगवान का तिरुभाव हो गया, ऐसे कहते हैं। विस्तार में शाम को चर्चा करेंगे। जब तीर लग गई भगवान के अंगूठे पर, भगवान चले आए भालका तीर्थ से लेकर यहाँ पर, इसको गोलोक तीर्थ यहाँ कहते हैं, जहाँ भगवान के चरण कमल हैं। आप सब प्रणाम कर रहे थे चरण कमलों को, तो यहाँ आकर भगवान का तिरुभाव हुआ। साथ साथ ही सारा क्षेत्र है प्रभास, जहाँ के यदुवंशियों ने आपस में झगड़ा करके एक दूसरे की हत्या करके यदुवंश को समाप्त कर डाला। ये तो श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि मेरी अब लीला समाप्त होने का समय आ चुका है, अब मेरे साथ लीला में देने के लिए यदुवंशी सब आए थे स्वर्ग लोक से, स्वधाम से, उनको भी अब वापस भेजना चाहिए। जिस काम से मैं और मेरे पार्षद आए थे वो समाप्त हो चुका, तो मैं तो निकल जाऊंगा यहाँ से, परंतु मेरे पीछे यहाँ यदुवंशी यदि रहेंगे तो उत्पात हो जाएगा, क्योंकि इनका सामना कोई नहीं कर पाएगा, ये इतने शक्तिशाली हैं मेरी कृपा से, इनका ऐश्वर्य, इनका बल और उनका क्षत्रिय घमंड वो अब इतना अधिक है कि ज्वार भाटा की तरह वो सारे पृथ्वी पर फैल जाएंगे और फिर से उत्पात हो जाएगा। इसलिए मेरे तिरुभाव के पहले इनका तिरुभाव होना आवश्यक है। इसलिए भगवान ने ऐसी एक योजना की जिसके द्वारा यदुवंशियों का तिरुभाव हुआ और फिर श्री कृष्ण ने स्वयं अपना तिरुभाव, अपने तिरुभाव की योजना करा दी। तो प्रभास क्षेत्र खास करके इस लीला के लिए प्रसिद्ध है। तो शाम को हम गहराई में विस्तार में इस लीला की चर्चा करेंगे। तो भालका तीर्थ जाने के बाद हम फिर अपने जगह जगह चले जाएंगे, प्रसाद पाएंगे और फिर शाम को हम मिलेंगे, हम स्नान करेंगे जहाँ हिरण्या सरस्वती नदी, हिरण्या नदी और समुद्र का संगम है, जहाँ हम होकर आए वहाँ से, तो वहाँ शाम को स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर कथा होगी और उसके बाद फिर यात्रा समाप्त। फिर कल अपने अपने जगह सब आप निकलने वाले हैं। तो ये है आज की शाम का कार्यक्रम। और कोई सूचनाएं हैं क्या अभी? हाँ अच्छा, और हम ये भी बताना चाहेंगे कि हम में से हम सब ने इन तीर्थ स्थानों का आनंद लिया है, हमें बहुत आध्यात्मिक लाभ मिला है, भक्तों का संग मिला है, और आशा करते हैं कि सबको आध्यात्मिक पोषण प्राप्त हुआ होगा। परंतु ये संभव इसलिए हुआ है कि अनेक भक्तों ने बहुत दिन रात मेहनत की है, केवल थोड़े दिनों के लिए नहीं, इस यात्रा की तैयारी करने के लिए बहुत दिन पहले से तैयारी हो रही थी, सेवाएं हो रही थी, यहाँ पहले आए थे थोड़े भक्त, और ऐसे कई भक्त हैं जिनके सेवा के बिना हम ये यात्रा नहीं कर पाते थे। इसलिए विशेष रूप से मैं थोड़े भक्तों का नाम लूँगा जिन्होंने सेवा की है। वैसे आप सब ने सेवा की है यहाँ आकर, यात्रा में शामिल होकर आपके भक्ति के द्वारा, आपके उत्साह और सेवा भाव के द्वारा ये आपने इस यात्रा को सफल बनाया है। आप सब नहीं होते तो हम गिने चुने एक दो भक्त आके क्या करते। तो आप सब की वजह से ये यात्रा सफल हुई है। आप सबको हार्दिक धन्यवाद कि आपका समय निकाल कर अपने दिनों के लिए आप सब यहाँ पर आए हैं। बहुत दूर दूर से भी भक्त आए हैं और छोटी मोटी सेवाएं इधर उधर तो आप सब ने किए हैं, परंतु विशेष रूप से जिन्होंने अधिक सेवा की है मैं केवल उनका नाम अब लूँगा। किसी का नाम रह जाए तो बुरा नहीं मानिएगा। सोचिए कि सोमनाथ जी ध्यान से सुन रहे हैं, वो कृपा अवश्य करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यात्रा कमेटी थी जिन्होंने ये सारी कल्पना की, पहले यहाँ आए थे एडवांस पार्टी में, सब देख गए, यहाँ सब बसों की बुकिंग कर ली, रहने की व्यवस्था कर ली, कौन से दिन हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, सारी योजना उन्होंने बनाई, पूरा चित्र बनाकर फिर वापस वो चले आए। तो वो है नंद महाराज प्रभु, गोपाल चंद्र प्रभु, सुकुमार प्रभु, गौरांग प्रसाद प्रभु और श्वेत निताई प्रभु। और साथ साथ सब चीज़ों को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए संकर्षण प्रभु, साथ साथ में जितने भी बसें हमारी थीं, हर एक बस में एक एक सेवक थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि ये देखना बस में से कोई रह नहीं जाए, बस में जो बैठने वाले भक्त हैं उनको कोई असुविधा ना हो, बस ड्राइवर आदि के साथ संपर्क रख के देखना कि सब सब ठीक ठाक चले। तो दीपक काटवा प्रभु, नंद नंदन प्रभु, पार्थ जीवन प्रभु, प्रेमरस प्रभु, श्याम प्राण प्रभु और अमर गोविंद प्रभु। तो इन भक्तों ने भी बहुत तनाव लिया, बस में सभी को संभाल कर ले जाना, बस को संभाल कर ले जाना, फिर कीर्तन की व्यवस्था गोविंद दत्त प्रभु ने संभाली और साथ में कई भक्तों ने कीर्तन किया। अधिक हमराज नारायण प्रभु को बहुत कीर्तन करते हुए देख रहे थे हर समय, बहुत किया हरिंदर प्रभु के साथ साथ। साउंड सिस्टम श्याम बिहारी प्रभु संभाल रहे थे, साथ साथ में भक्त देवेश भी थे, और भी कोई भक्त होंगे तो और भी कोई थे क्या साउंड सिस्टम के लिए? श्रीवत्स प्रभु भी थे। और हार बनाने की सेवा में थे लीना माता जी और स्वाति माता जी, तो हर दिन जो मालाएं लगती थी वो बनाते थे। और जो ड्रामाएं हुई, नाटक हुए जो बच्चों ने प्रस्तुत किए, तो श्याम प्राण प्रभु, श्री कुमारी माता जी, राधिका माता जी और ब्रजरानी माता जी और किचन टीम, इनके बारे में तो विशेष हमें कहना चाहिए। ये नहीं होते
तो हम क्या करते, ये नहीं होते तो हम क्या करते। उन्होंने कितनी मेहनत की है इसको कहना मुश्किल है। हमसे पहले निकल पड़ते, जब तक हम पहुंच जाते हमारे लिए प्रसाद तैयार, और जब हम उठते हैं प्रसाद तैयार। वो लोग रात को बहुत देर से पहुंचते और बहुत कम नींद उनको मिलती रात में, 2 घंटे 3 घंटे कभी कभी मिल जाता मुश्किल से। फिर उठ के सुबह का प्रसाद तैयार करना, फिर दोपहर का करना, फिर शाम का करना, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर सारे रसोई घर को फिर से पुनः चूल्हे आदि को सब सेट करना, वहाँ पे तैयार करना, सामान आदि की तैयारी करना, खरीदी सब कर लेना, बहुत बड़ा काम है। और इन भक्तों ने अच्छी सेवा की, मैं खास उन सबको बुलाना चाहूँगा। किचन के पास हैं तो यहाँ पर आए आए सेवा कर रहे हैं, तो हो सकता है तो शाम को हमें खास धन्यवाद उन सबको हम देंगे, उन सबको बुलाकर। या देखना कि शाम को कहीं पर वो रहें कथा के समय, नहीं तो सेवा करते रहेंगे। तो वराह रूप प्रभु करुणानाथ प्रभु, साधना सिद्ध प्रभु, भूमि देवी माता जी,
और लिस्ट कहाँ है,
और लिस्ट के नाम नहीं है कोई, और भी बहुत सारे प्रभु जी के माता जी थे, उनके नाम थे कि शाम को हम अच्छी तरह से उनको बुलाकर करेंगे, ठीक है। फिर यशोदा मई माता जी, सुंदर रानी माता जी, इन्होंने भी बहुत सेवा की प्रसाद बनाने के लिए। रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट वासुदेव कृष्ण प्रभु, और सूचनाएं नंदनंदन प्रभु, और फिर सब कुछ तैयार करना लिख के, रूप मंजरी माता जी, सारिका माता जी, राजरानी माता जी, और अकोमोडेशन मतलब रहने का, कहाँ रहने के जो बंदोबस्त वगैरह है, अनंत हरि प्रभु। और भी बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने सेवा की है, किसी का नाम रह गया,
गौरव
प्रसाद
सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं महाराज जी का, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ये सब कार्य सफल हुआ। उसके बाद धन्यवाद है आप सब भक्तों का जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया, और मैनेजमेंट यात्रा कमेटी की तरफ से कोई ना कोई तो त्रुटि रह ही गई होगी। बीच में सुनने को मिला एकादशी के दिन थोड़ा प्रसाद में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि वो कुछ जो अरेंजमेंट था, जो मतलब मेनू था, उसमें थोड़ा चेंज हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ था। और जिस किसी को उस दिन प्रसाद थोड़ा कम मिला हो या लेट मिला हो, पहले तो उसकी क्षमा चाहते हैं। और जो हमारे भक्तों को कमेटी की तरफ से कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम जो है तहे दिल से क्षमा मांगते हैं। तो आशा है आप सबकी यात्रा बहुत सफल हुई होगी, और जो कुछ कमी रह गई हो उसके लिए आप सब हमें क्षमा करें। हरे कृष्ण।
और जिन्होंने स्पॉन्सरशिप किया है उनके भी धन्यवाद, उनके भी नाम आप पढ़ सकते हैं।
हरे कृष्णा। तो ये लिस्ट में हमने महाराज को दिया था, लेकिन महाराज ने पढ़ने के लिए क्या मालूम नहीं कैसे पढ़े हैं, क्योंकि तात्पर्य पढ़ा है, जैसे भगवद गीता में होता है श्लोक होता है, उसके बाद भाषांतर और तात्पर्य होता है। महाराज ने सिर्फ तात्पर्य पढ़ा दिया है लेकिन श्लोक पढ़ा नहीं। तो श्लोक में पहला ही था स्पिरिचुअल गाइडेंस इज होलीनेस भक्ति रसामृत, महाराज ये छोड़ दिया महाराज ने। ठीक है। हरे
कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब निकलना होगा ना,
कृष्ण भजन के
स्पॉन्सर्स। हां
हरे कृष्ण।